तो चलते हैं पेज 36 पे. नेक्स्ट पॉइंट है तंजीम वक्त, टाइम को ऑर्गेनाइज करना. मोमिन को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों और मुख्तलिफ कामों के दरमियान अपने औकात को मुनज्जम और मुनजबित करे. मुनज्जम नज़म से और मुनजबित जब्त से है, यानी अपने वक्त पे नज़र रखे और उससे बेहतरीन फ़ायदा उठाए. वो काम चाहे दीनी हो या दुनियावी, और जो काम जिस अहमियत और जिस तरतीब का हामिल हो, इसको इसी अहमियत और तरतीब से अंजाम देना चाहिए. बस कामों का वक्त मुतय्यन होता है और बाज़ का नहीं, इसलिए इन्हें किसी वक्त भी अंजाम दिया जा सकता है. इसी तरह काम उजलत का तालिब होता है कि इसको फ़ौरन अंजाम देना चाहिए. औकात की इस तंजीम और तरतीब का फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ कामों के दरमियान तसादुम का अंदेशा ख़त्म हो जाता है. बात वाज़े है ना? आप देखिए, पहले से अगर ऑर्गेनाइज़ करके खाना पकाना शुरू करें, कम वक्त में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. और अगर आपको पता ही नहीं पकाना क्या है, कितना पकाना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा टाइम लेती है, कौन सी कम, तो आप देखते हैं कि एंड तक आप परेशान होते हैं और मेहमान भी आ जाते हैं. तो हमेशा कामों को देखें. और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कहा और बोला गया है, इतनी पूरी पूरी सीरीज़ मौजूद हैं. बस अब तो अमल का वक्त है. अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने वाला बना दे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहुफ़ इब्राहिम की कुछ तालीमात इस तरह बयान फरमाई हैं. ये बताइए कि कुरान पाक में सुहुफ़ इब्राहिम का तذکرہ कहाँ आया है? सूरत आला के आखिर में, बिल्कुल, फ़ी सुहुफ़ इब्राहिम व मूसा. तो सुहुफ़ किसको कहते हैं? सहीफ़े को. इसी से लफ सफ़ा भी है ना, तो सुहुफ़ सहीफ़ा. मुराद क्या है कि छोटे छोटे बुकलेट्स, यानी पहले दौर के अंबिया में से कुछ को पूरी किताबें नहीं दी गई, बल्कि छोटे छोटे बुकलेट्स या कुछ टॉपिक वाइज चीज़ें दी गई थी. तो उसी का यहाँ तस्करा है. क्या लिखा था? वलल आकिली मालम यकुन मगलूबन अला अकली ही अन तकून लहु साआत सात युनाजी फ़ी हर बहू व सात यो हासिबु फ़ी ह नफसहू व सात यतफक्कर फ़ी ह फ़ी सुन इल्लाही वसात यखलुफ़ी हालिहाजती मिनलमत अमी वल मशरब. अक़लमंद आदमी को चाहिए कि वह अपने औकात को चार हिस्सों में तकसीम करे. देखिए, आपके मेरे लिए कितनी अच्छी टाइम प्लानिंग की टिप है. इसमें कैसे करे? एक हिस्सा अल्लाह ताला से मनाजात के लिए. अब ये किस सूरत में होगा? नमाज और कुरान. जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं या हम नमाज में होते हैं, तो हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम इस वक्त अपने रब से मनाजात करें. और मनाजात क्या है? नाजी, निजात, नाजा, यानी चुपके चुपके अल्लाह से बात करना, अल्लाह ताला को पुकारना. दूसरा इसे एहतसाब नफ्स के लिए. ये क्या होता है? अपने आप को बेहतर करने की टिप्स. कितने लोग हैं जो इस पे सोचते भी हों, इल्ला माशाल्लाह. अल्लाह ताला हमें सबसे ज़्यादा अपने एहतसाब की फ़िक्र लगा दे. तीसरा हिस्सा अल्लाह की तख्लीक में गौर व फ़िक्र के लिए. इसके लिए क्या ज़रूरी है? कायनात में गौर व फिक्र, बाहर जाएँ, घूमें. इन नफ़ी खल्क समावाती वलर्ती वख्तिलाफ़ लैल वन्नहारी लायातिल उलिल अलबाब. तो हर वक्त किताबें खोल के नहीं पढ़ी जा सकती, कभी कभी कायनात की किताब को भी पढ़ने की ज़रूरत है. और चौथा हिस्सा अपने खाने पीने की ज़रूरियात के लिए ख़ास करें. आप आज जाकर कीजिएगा, कल का जो दिन गुज़रा, क्योंकि वही आपको याद होगा सबसे ज़्यादा. ज़रा देखिए, पूरे दिन को आपने सबसे ज़्यादा किस हिस्से में डाला? आप देखिए, अगर इस चार वाली बांट को देखें तो 24 घंटे के 12 और 12 का 6, 6 घंटे अल्लाह से मनाजात, 6 घंटे नफ्स का एहतसाब, 6 घंटे कायनात पे गौर व फिक्र, और 6 घंटे खाने पीने. हमारे किधर हैं? मेरे लिए दो हिस्से जमा कर लें तो 12 घंटे तो हमारे सिर्फ खाने पीने सोने जागने के हैं. जितना अपने आप को क्लोजली ऑब्ज़र्व करेंगे ना, आप देखेंगे उतना फ़ायदा होगा. मैंने अक्सर लोगों को देखा है, सब कुछ कर रहे हैं, चलेंगे क्लास में, अच्छा नहीं, बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे तो अभी भी साथ हैं, नहीं बच्चे तंग करते हैं, नहीं बच्चे बैठते नहीं, वो तो अभी भी नहीं बैठ रहे. यानी हमारा एक माइंड सेट इधर चल चुका है कि नहीं बस इतना ही बहुत है, नमाज़ पढ़ ली है ना काफ़ी, नहीं मैं बिज़ी हूँ, मैं जॉब करती हूँ. आप दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मुझे शऊर दे. कई लोगों को दिखता ही नहीं है कि उनको करना क्या है. और ये कैसे आता है? अल्लाह के खौफ से. रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह. वक्त की तकसीम और तंजीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को है जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और इनके सर पर कामों का बहुत ज़्यादा बोझ रहता है, ताकि इन्हें इस बात का एहसास हो कि जिम्मेदारियाँ इनकी औकात से भरी हुई हैं. कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप सिर्फ घर के काम कर रहे हैं बड़े अच्छे मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर साथ जॉब शुरू कर दी तो आप डबल जिम्मेदारियां हो गई, अब वक्त नहीं मिलता। क्लास शुरू कर दी, अब क्या होगा? पहले नॉर्मल चल रही थी जिंदगी, अब बेबी आ गया, अब उस बेबी को साथ लेकर कैसे मैनेज करें? तो जिंदगी में जब कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया रूप, कोई नया रंग आपकी जिंदगी में आए ना, तो थोड़ा सा रीसेट कर लें, प्लान कर लें। बस आप देखिए कि बच्चे के साथ आप कैसे वक्त प्लान करें, बच्चे के सोने जागने को सबसे पहले मैनेज करें। जो माएँ हर वक्त बच्चों को दूध ही पिलाती रहती हैं, हर वक्त उनके पैम्पर साफ करेंगी, बच्चे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, और जो हर वक्त खिलाती रहेंगी वो सारा दिन फिर उन्हीं के पीछे लगी रहेंगी ना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ भी दीन के काम करें और दुनिया की नफ़े के बने, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और जिस जगह हर वक्त बच्चे शोर में जा रहे हैं और उछल रहे हैं और कूद रहे हैं, और घर एक जंगल बना हुआ है और खिलौनों से कूद कूद के आपको जाना पड़ रहा है, तो सॉरी टू से दैट कि आप तो नमाज भी नहीं ठीक पढ़ रही होंगी। तो अपने बच्चों को मैनेज करें। पहली माएँ अपने बच्चों को भूख लगने के बावजूद दूध नहीं देती थी, कहती थी इनको सब्र आए, थोड़ा सा बच्चा चुप करे फिर दूध देंगी। आपको था कि मैंने ये साल एक पूरी सीरीज की है हमारे असलाफ और रमज़ान, तो उसमें मैंने एक बात सुनाई थी कि हमारे असलाफ में कुछ ऐसी माएँ भी थी कि रमज़ान में अपने बच्चों को दिन में दूध ही नहीं देती थी, सहरी पे देती थी फिर मगरिब पे। क्यों? कहती थी इनको पता चले कि ये रमज़ान है, अब अगर ये जो जुल्म है ये तो बच्चे को मार देना है। वो माओ के पेट से तकवा लेकर आते थे, उनको सब्र भी आ जाता था। और हज़रत उमर कहते हैं कि हमारे दौर में औरतें बच्चों को रोज़ा रखाती थी और मस्जिद में ले जाती, और जब वो खाने को मांगते कुछ तो हम उनको गुड़िया से खिलाते। अब वो 5-6 साल के बच्चे होंगे ना, आज हमने अपने बच्चों के नफ्स भी मोटे कर दिए, सारा दिन तड़पते हैं क्योंकि खिला जो इतना दिया, उनके अंदर जो इतनी एनर्जी डाल दी तो निकलेगी ना। ऊपर से कार्टून दिखा दिखा के उनको इंसान से कुछ और ही बना दिया, ऊपर से सेलफोन पे उनको जो म्यूजिक वाली आपने वीडियोस दिखा दी। तो याद रखिए, ये सब कुछ हमारे बच्चों में जाता है ना, ये फिर निकलता है, और भुगतती फिर सबसे ज्यादा माई है, मजलूम बनती है। लेकिन थोड़ा सा माओ को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, अल्लाह करे कि वक्त की तंजीम करनी आ जाए। और मैंने देखा अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, एक मैं सोचती एक बालिश्त भर का बच्चा एक औरत को कई जिम्मेदारियों से पीछे कर देता है। तो मुझे बताइए कि जिस बच्चे का नाम लेकर आप अल्लाह के दीन से रुकेंगी, क्या कल आप उस बच्चे की नेकी की दुआएं कर सकेंगी? क्या आप उसकी अच्छी तरबियत कर सकेंगी? मैं कहती हूँ बच्चों की माँ बेस्ट ऑडियंस होती है क्लासेस का, क्योंकि उसकी गोद में तो नई नस्ल है जो तैयार होनी है। हमने तो जो बनना था बन गया, अब तो बस धक्काशाही है, कहीं ना कहीं अपने आप को काट छांटने की कोशिश में ज़िंदगी गुजारेंगे। ये मासूमों को देखिए कैसे पालना है, लेकिन आज पूरा दौर ही इस तरह चल पड़ा कि बस हर बात मानो। तो बच्चों वाली माओं को तो ख़ास तौर पर टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। जब आदमी अपने औकात की तंजीम कर रहा हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक हिस्सा अपने आराम और राहत के लिए भी फारिग करे, इसलिए कि नफ्स देर तक मेहनत करने से उकता जाता है और जिस्म की तरह दिल भी थक जाता है। और ये सच है कि नहीं है? बिल्कुल सच है। आप देखिए कि मैंने जब आपको या किसी जगह भी पढ़ाना होता है ना, मेरा पूरा एक प्लान मेरे माइंड में होता है, और जिसमें ख़ास तौर पे पढ़ाने से आने से पहले के जो 2-2.5 घंटे हैं, ये मैं अगर मेरे ये ख़राब हो जाए ना तो मेरा सारा पढ़ाना ख़राब हो जाता है, और अगर मेरा आराम ख़राब हो गया तो मुझे हो सकता है क्लास में मैं फ्रेश ना दिखूँ। और इसी तरह से आप देखिए कि अगर आप खाना बहुत खा लेते हैं तो अपने पूरे दिन को प्लान करें कब खाना है कब सोना है, क्योंकि रेस्ट किए बगैर भी बात नहीं बनती। फिर एक बात लोग कहते हैं जी हम कहीं नहीं जाते, हम तो बस घर में रहते हैं, हम कुछ नहीं करते, तो अगली बात भी पढ़ लीजिए। इसीलिए वक्त का कुछ हिस्सा जायज़ खेल और तफरीह के लिए भी निकालना ज़रूरी है। हज़रत अली का कौल है कि थोड़े थोड़े वक्फे से दिल को आराम पहुंचाते रहो, इसलिए कि दिल को जब मजबूर किया जाता है तो वह अंधा हो जाता है। बोर हो जाएंगे आप, निकलिए वॉक कीजिए, थोड़ी सी सैर करें, फसीरु फिल अर्दी फयंज़ुरु। मुझे तो लगता ही नहीं कि बर्लिन के इर्द गिर्द भी कोई जगह ऐसी है कि जिसको आप देखने जाते होंगे, है ऐसी कोई जगह? सच्ची बात है कि जब भी मैंने किसी से पूछा उन्होंने कहा इधर बिल्डिंग्स हैं और इधर ये है, और आपने दिखाई भी हमें बहुत सारी शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह, वो कितनी को दफ़ा देखेंगे आप? देखिए इंसानी चीज़ें जो होती है ना, एक दफ़ा देख लेंगे तो देखी हुई है, यानी पेरिस मेरे हाले अब 6 दफ़ा आ चुकी हूँ, एफिल टावर एक दफ़ा देखा होगा पहली दफ़ा, उसके बाद कहते भी हैं हम कहते हमने देखा हुआ है, चलो कोई कहेगा शौक से फिर चले जाएंगे। लेकिन पहाड़ देख के दिल नहीं भरता, सूरज देख के चांद देख के, हर साल हम नॉर्वे में ट्रिप लेकर जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन के लिए साइट सीइंग के लिए जाते हैं, मज़ा आता है। कोई नहीं कहता हाँ ये फूल पत्ते ये तो हज़ारों दफ़ा देखे, तो नेचुरल चीज़ों को देखा करें, इससे एनर्जी मिलती है। आप फील करेंगे کہ پھول کھلے دیکھ کر اللہ کا پیار یاد آتا ہے، نزاکت نظر آتی ہے، پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ کی بڑائی نظر آتی ہے، آسمان پہ تیرتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کے. اور میں تو اپنی آدھی تیاری باہر کرتی ہوں، لوگ کتاب کھول کے کرتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ وقت ضرور چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں میں نیچر کے ساتھ رہوں، چاہے وہ اور کچھ نہیں تو گھر کے بیک یارڈ میں سے کہیں کھڑکی میں نظر آتے ہوئے کسی پودے کو ہی دیکھ لے. کیوں؟ ہماری روح کو بھی یہ ایک تڑواہٹ چاہیے ہوتی ہے. پھر اسی طرح کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کام میں اتنا تھکا دے کہ اس کی قوت کارکردگی کمزور پڑ جائے اور اس کی رفتار کار یعنی کام کرنے کی رفتار کا تسلسل ہی ٹوٹ جائے. اس طرف اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور اپنے معاشرے کے حقوق پامال کر بیٹھے، خواہ تھکن اللہ کی عبادت، روزہ و نماز اور اطاعت و زہد ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، تو تھوڑا سا نکلا کریں. اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیں، کھلی جگہوں میں لے جائیں، باغ میں گھاس کو دیکھ کے جتنا اللہ یاد آتا ہے، اتنی نازک گھاس اور کئی من کا وزن کا بندہ اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اٹھتا ہے تو وہ بالکل سیدھا. یہ اصل میں شخصیت ہونی چاہیے، نرم لیکن گرم، کہ آپ کہیں کہ ہائے اس گھاس کے اوپر کوئی بیٹھ گیا اب یہ تو کبھی بھی نہیں اگے گا، لیکن آپ دیکھیے اس میں نزاکت ہے، جب پاؤں آپ اس سے اٹھاتے ہیں وہ پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب کو رات میں آپ کے پیچھے کثرت نماز میں مقابلہ کرتے دیکھا تو فرمایا، یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطیقون فان اللہ لا یمل لا یمل حتی تملوا وان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل. لوگو اتنا ہی کرو جتنی تمہیں طاقت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم لوگ اکتا جاؤ. اللہ کے نزدیک بہتر اعمال وہ ہیں جن کی پابندی کی جائے، خواہ وہ تھوڑے ہی ہوں. بات واضح، خود پہ جبر کر کے عبادت بھی نہیں ہو سکتی. آپ کو پتا کہ اللہ کے نبی ایک دن آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی زوجہ ہیں اور انہوں نے اپنی چٹیا ایک رسی کے ساتھ چھت سے باندھی ہوئی ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا جب قیام میں کھڑی ہوتی ہوں تو کبھی نیند کا جھونکا آتا ہے نا تو بال کھنچتے ہیں تو میری آنکھ کھلتی ہیں. تو آپ نے تب بھی اسی قسم کی بات فرمائی کہ اتنا کرو جس کو تم انجوائے کرو. آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی جب بور ہونے لگے تو چھوڑ دینا چاہیے، نیند آنے لگے تو سو جانا چاہیے. تو ہمارا دین دین فطرت ہے، تو اپنی تفریح کا بھی اہتمام کریں. یہ بھی بورنگ زندگی ہوتی ہے کہ جس بندے کی زندگی میں کوئی فن ہی نہیں ہے، گھر میں ہے تو ہر وقت لگ رہا ہے ہاسٹل میں، یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، ادھر جوتے نہیں رکھنے، ادھر نہیں رکھنے، ادھر کپڑے نہیں رکھنے، ہر وقت ٹی ٹی اور اس طرح گھر کو ماحول کو بوجھل بنانا، اس سے گھر والوں کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. تو اپنی زندگی میں یہ بھی چیز اگر نہیں ہے تو لائیے، پیدل نکلیے، واک کیجیے، کوئی گھاس کی جگہ ہے، کوئی باغ ہے، کوئی واکنگ ٹریل ہے، دن میں، رات میں، خاص طور پہ جو ایسے وقت جب کہ دوسرے نہ ہوں، یعنی بالکل فجر کے بعد کا وقت یا مغرب کے بعد، ایسا وقت جب ملگجہ سا ہوتا ہے. اور یقین کریں غیر محسوس طریقے سے پھر آپ اللہ کا قرب پانے لگیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا، ان دین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والراحۃ والشیء من الدجلۃ. کتنے پیارے آپ کے دیکھیے مشورے ہیں. فرمایا کہ بلا شبہ دین آسان ہے، جو کوئی دین کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی زیادہ دن تک وہ کر نہیں سکے گا اور اس کام کو چھوڑ دے گا. معنی روی اختیار کرو اور اب وہ عمل کرو جو دین کی رخ کے قریب تر ہو، اور تھوڑے عمل پر مداومت. مداومت کس کو کہتے ہیں؟ دوام، یعنی ہمیشگی اختیار کرنا. تھوڑے عمل پر مداومت کر کے ثواب کی بشارت حاصل کرو. تو کیا مداومت مین؟ کہ اس کو ہمیشہ کرنا، کنٹینیو کرتے رہو. یہ نہیں کہ ایک دن جوش میں ساری رات جاگے کیونکہ آج 15 شعبان تھی تو 16 شعبان کی فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، یہ نہ کرو. ہم دیکھیے رمضان میں کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، تو عید کے بعد سے آج تک ذرا دیکھے کیا کیا، یہ بھی سوال ہے. رمضان میں اتنا قیام، راتوں میں 8 نہیں 20 تراویاں، پھر قیام اللیل بھی، پھر رات میں شبینے بھی کیے، تو اب یہ آخری 8-10 راتیں جو گزری اس میں کیا کیا، یہ بھی دیکھیے. جسم کو ضرورت ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں ایک دم چینی چھوڑ دیں تو آپ کا جسم کمزوری محسوس کرے گا، ایک دم آپ روٹی چھوڑ دیں تو ویکنیس ہوگی. تو اتنی عبادت رمضان میں کہ اب جسم کو تو نہیں پتا کہ اب خیر سے رمضان چلا گیا اور شوال آ گیا. تو ہمیشہ عبادت میں بھی توازن رکھیے. ایک بار آپ نے قرت، قیام اور روزے میں انتہائی جد و جہد کرنے والوں کو میانہ روی اور اعتدال کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، فعین علی جسدی کا علیہ کا حق، وعین علی عینی کا علیہ کا حق، وعین علی زوجی کا علیہ کا حق، وعین علی زوری کا علیہ کا حق. بلا شبہ تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، اور تمہارے ملاقاتیوں کا تم پر حق ہے. ہے کوئی ایسا پیارا دین؟ سب کے حق دلواتا ہے آپ سے مجھ سے. آپ نے زہد و اطاعت میں غلو کرنے والی ایک جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، واللہی انی لاخشاکم للہی واتقاکم لہو لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و تزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، اور جو کوئی میرے طریقے کو ناپسند کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ دونوں روایتیں جو ہم نے پڑھی یہ بخاری کی ہیں، اور مختلف طرق سے دیکھیں تو مسلم میں بھی موجود ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ دین بیلنسڈ دین ہے، اور وہ لوگ بھی بورنگ ہوتے ہیں جو صرف بیٹھ کے صرف پڑھتے پڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی بورنگ ہوتے ہیں جو صرف وقت عبادت کی باتیں، جب ان کے پاس بیٹھو بس نصیحتیں، جب ان کے پاس بیٹھو بس وہ خوف زدہ کرتے ہیں ڈراوے۔ دیکھیے، ہنسیے، بولیے، انجوائے کیجئے، کھائیے، پیئے، پہنیے، اوڑھیے، لیکن غافل نہ ہو، اس میں کھو کر اپنے آپ کو بالکل دوسرے چیزوں میں سے نہ لے جائیے۔ تو کبھی کبھی ریلیکسیشن، اور ہمارے دین میں ہر فطری جذبے کی تسکین موجود ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اگر دین کا بہترین روپ دکھانا چاہتے ہیں تو بیلنس دین رکھیں، آپ خود کھیلیں ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں، ایکسرسائز کریں، کوکنگ کر رہے ہیں تو سارے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، چلے آپ گھر صاف کریں سب مل کے کر رہے ہیں، تو اچھے گھرانوں میں ہمیشہ ہلچل ہوتی ہے اور سب ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو خراب گھرانے اس میں ماں سارا دن نوکرانی بن کے کام کر رہی ہے اور بچے بچیاں ماشاء اللہ اپنے راج کر رہے ہیں اور میاں سب روپ ڈال رہے ہیں، یہ ٹھیک طریقہ نہیں۔ آپ کبھی اللہ کے نبی کے بارے میں پڑھیے، ایک چھوٹی سی بک ہے پروفٹ ایٹ ہوم، اللہ کے نبی کے گھر میں ایک دن، اردو میں بھی میں نے اس کا ترجمہ شاید دیکھا کہیں، تو آپ پڑھ کے دیکھیے، اتنا لائیولی آپ کا گھر ہوتا تھا کہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ بور ہو رہے ہیں، اور جب سب کو آپ بزی رکھتے ہیں، آپس میں انٹریکشن رہتے ہیں، تو یقین کریں باہر کی دوستیوں کی پھر اتنی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اگر شوہر بیوی کی دوستی ہے، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں شوہر زیادہ وقت باہر نہیں گزاریں گے، کام کیا گھر، گھر میں ہے، بیوی سے دوستی ہے، بات چیت ہے، اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں وقت گزارنے کی۔ اور بعض شوہر کہتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں کہ سو جائے بیوی تو ہی گھر جائیں، تو اسی لیے تو دوستوں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ آتے ہی اس نے کہنا یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے تو وہ دلا دو، تو پھر شکوے شکایتیں گلے ہی ہیں نا۔ پھر یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہی آپ کا طریقہ زندگی ہے، یہ مادیت اور روحانیت کے درمیان اعتدال اور توسط کی راہ ہے، اور لذت نفس اور رب کے حقوق کے درمیان بہترین توازن ہے۔ اسی لیے اسلام کی نگاہ میں انسان کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ کھیل کود میں گزارے اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کے ذریعے اپنے نفس کو راحت پہنچائے، اور خاص طور پہ اس میں میں کہوں گی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز۔ ہم اپنے بچوں کو اگر کھیلنے کے نام پہ بھی لے جائیں تو پھر کسی ایسے بند چکی چیز یا کسی ایسی جگہ جہاں میوزک بھی اتنا ہے اور گھبراہٹ ہے اور وہاں اندر ایک آرٹیفیشیل لائٹ چل رہی نہیں، تو کوشش کیا کریں کہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز رکھیں، اس سے ہماری فطرت خود بخود مطمئن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حنزلہ کے بارے میں سنا کہ وہ اپنے آپ پر منافق ہونے کا الزام محض اس بنا پر عائد کر رہے ہیں کہ ان کی جو حالت آپ کی مجلس میں ہوتی تھی وہ اپنے گھر اور اہل و عیال میں نہیں ہوتی۔ تو یہ سن کر آپ نے ان سے فرمایا، اور ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کو یہ غم لگا رہتا ہے نا، قرآن کلاس میں جیسے ہوتا ہے، مسجد میں جائیں جیسے ہوتا ہے، پھر بعد میں کیا ہے، درس میں تو اس وقت تو یہ تھا۔ تو اللہ کے نبی کا جواب سنیے، والذی نفسی بیدہ ان لو تدومون علی ما تکونون عندی وفی الذکری لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم فرشکم وفی طرقکم ولکن یا حنزلہ ساعتا وساعتا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ اس حالت پر باقی رہو جو میری مجلس میں ہوتی ہے یا یاد الہی میں ہوتی ہے تو تم سے فرشتے راستوں میں مصافحہ کریں، لیکن اے حنزلہ وقت وقت کی بات ہے، وقت وقت کی بات ہے، تو ہر وقت یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دین بیلنس دین سکھاتا ہے، اور خوش رہیے، خوش رکھیے۔ بعض لوگ دین کے اوپر آنے کے بعد بورنگ ہو جاتے ہیں، سچی بات ہے، ان کو دیکھ کے بوریت کا احساس ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں لوگ پسند نہیں کرتے، میرے خاندان والے کٹ گئے، میرے رشتہ دار ناراض ہیں، میرے بھائی بہن بھی اب مجھ سے کٹے کٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک فطری ریزسٹنس تو ہوتی ہے، اس کو چھوڑیں، اپنے آپ کو بھی تو چیک کریں، آخر میرے میں کیا کشش ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ وقت گزارے، آخر میرے اندر کتنا کو پیار ہے کہ میرے بھائی بہن اختلاف کے باوجود بھی میرے پاس آ کے بیٹھے، جب کوئی میرے گھر آتا ہے تو کیا میں اس کو اچھا ٹائم دیتی ہوں، انجوائے کراتی ہوں۔ زندگی کا ہر روپ کوشش کیجئے کہ خوشگوار ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کو انرجی بھی ملے گی۔ آپ دیکھیں نا، ہم عورتیں کھانا بناتی ہیں، थके पसीना आया, गर्मी लगी, लेकिन जो ही खाने की टेबल पे बैठे बच्चे, मामा खाना बहुत बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का, फ्रेश हो जाता है बंदा। अच्छा चलो बनाया, सबने पसंद किया, कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है कि अगर आप अच्छा खाना पकाती हैं और किसी ने खाना खा के खुशी का इजहार किया। बिल्कुल, कोई आपके लिए कुछ करे तो उसको खुश होके बताएं, और वरना ये हाल है, नहीं हम तो अब जन्नत में जाके खाएंगे, और ये अंगूर और स्ट्रॉबेरियाँ और बेरीज, तौबा अस्तगफार, इसराफ, तो फिर ज़ाया कर दें सारी, फेंक दें। यानी बाज़ लोगों का हर अच्छी चीज़ के साथ ये रवैया होता है, अस्तगफार, अल्लाह पूछेगा, तो फिर अल्लाह ने पैदा क्यों किया अंगूर? क्या काफिरों के लिए बनाई है? नहीं, खाइए पिए और शुक्र कीजिए। हदीस मैंने कि खाकर शुक्र करने वाला रोज़ा रख कर सब्र करने वाले के बराबर है। तो आप रोज़ा रख के अगर सब्र कर रहे हैं तो रोज़ा ना रख कर खा के शुक्र कर लीजिए। अल्लाह ताला जो चीज़ नहीं चाहते वो ये है कि इंसान गाफिल हो और अल्लाह की खाकर अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें पूरे दिल से कीजिए। दीन बहुत खुला है, हम तंग हैं, हमारी नज़र बड़ी तंग है, हम किसी को अच्छा कपड़ा पहना देखे हम कहते हैं मुनाफिक, अच्छा खाना खाते देखे हम कहते हैं मुसरिफ, और रिश्तान का भाई और तबजीर और अल्लाह पूछेगा। नहीं, आप खाइए पिए पहनी ओढ़िए, लेकिन नीयत दुरुस्त रखिए, तरीका दुरुस्त रखिए। जब हम इन सब के बाद नाफरमानी के काम करते हैं और फिर उसमें गुनाहों की आमेजिश ले आते हैं, ये पकड़ का जरिया है। ये है एक मुसलमान की शान के कुछ वक्त अपने रब के लिए मखसूस करे और कुछ वक्त अपने दिल के लिए। एक किस्सा बहुत मशहूर है कि असमाई ने एक देहात में किसी औरत को देखा। अब ज़रा देखिए कितनी खूबसूरत मिसाल है, मुझे उम्मीद है कि आप भी इस पर अमल करेंगी। क्या इसके एक हाथ में तस्बीह है और वो खड़ी सुरमा लगा रही है और बनाव सिंगार कर रही है। इस पर असमाई ने इससे पूछा, इन दोनों चीज़ों में क्या रब्त है? यानी इसे ये बात अजीब मालूम हुई कि एक औरत जिक्र और तस्बीह करने वाली है और साथ अपनी आराइश और ज़िबाइश में भी लगी हुई है। इसके सवाल पर औरत ने जवाब में ये शेर कहा, कहती है, मेरे मामूलात में अल्लाह के लिए ख़ास पहलू है, वल्लाहि मिन्नी जानिबुल्ला उदीउहु, एक ख़ास पहलू है जिससे मैं तवज्जो नहीं हटाती, और इसी तरह तफरीह और फरागत के लिए भी एक पहलू है। असमई ने कहा कि मैं समझ गया कि ये कोई नेक खातून है और शोहर वाली है जिसके लिए ये सिंगार कर रही है। चलिए बताइए, कब आखिरी दफ़ा अपने शोहर के लिए सिंगार किया? यहाँ आते हुए तो आप करते ही हैं बहुत, और ईद पे तो बहुत ही किया, और बाज़ार जाते हुए तो लिपस्टिक औरतें ज़रूर लगाती हैं। कब आखिरी बार अपने हस्बैंड के लिए आपने सिंगार किया? फिर इत्तफाकन आपको बाहर भी जाना पड़ गया है। देखिए, एक मुसलमान औरत सबसे अच्छी अपने घर में लगती है, और फिर अगर उसी तरह बाहर आ गई, किसी ने देख लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि घर में माशाल्लाह मासी लहसुन प्याज की बोरी और खुशबुएं 70 किस्म के पसीनों में मिली हुई, और बाहर आते हुए ज़रा मैं कपड़े ना बदल लूँ, किसको दिखाना है? मुझे कभी नहीं समझ आई उन औरतों का हाल कि जो दूसरे इवन अपनी महफिलों में औरतों दोस्तों को दिखाने के लिए पहनती ओढ़ती हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए कोई उनके अंदर अट्रैक्शन नहीं है। पहनिए, ओढ़िए अच्छे कपड़े, शादी वाले, काम वाले, बनारसी, जो मर्जी पहने, पर अपने शौहर के लिए खुश रहें। और आप देखिए, आप अच्छे कपड़े पहनते ना, आप खुश हो जाते हैं, आपका दिल खिल जाता है। तो इन कपड़ों का हक ये नहीं है कि आप इनको बाहर पहनते हुए जाते पहने, घर में पहने, आराम से पहने, और कभी बाहर जाने हुए भी पहनने के तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये नहीं कि आप कह नहीं, बाहर आप ज़रूर ही बुरे हाल में आना है, लेकिन आपका मेरा वो जो एक नुक्ता नज़र या एक जो फोकल पॉइंट है, वो अपने घर वाले होने चाहिए। जैसे मुझे एक सिस्टर याद आती है, वो कहती, मैं अपने बच्चों को दिखाने के लिए पहनती हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, मॉम यू आर लुकिंग सो नाइस, बस वो इसके लिए पहनती, कभी अपने भाई के लिए पहनती है, कभी बाप के लिए, खुश होते हैं ना, अगला खुश होता है, अच्छा मेरी बेटी कितनी खुश है, अच्छा मेरी बीवी कितनी अच्छी है, ये मेरे लिए पहन रही है। तो घर वालों को भी तो खुश करें अल्लाह के बंदों को भी, और ख़ास तौर पर जब कुरान ज़िंदगी में आए तो घर वालों को खुश करना तो शुरू कर दें, फिर देखिए वो आपको कहेंगे हफ्ते में एक दिन नहीं, आप 5 दिन जाइए, ताकि आप पहले से 5 गुना अच्छी हो जाएं। तो बोर करना और दूसरों को दुखी करना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें से आपको सबसे अच्छा यही नुक्ता लगा होगा, हाँ तो करें, इसमें कोई गुनाह नहीं है। देखिए, जायज़ है, हलाल है, अच्छे कपड़े पहने, सॉफ्ट कपड़े पहने, मज़े के पहने, अट्रैक्शन वाले पहने, कोई आपको नहीं रोकता, लेकिन बेपर्दगी, बेहयाई, दूसरों को गुनाहों में डालना, ये चीज़ गलत चीज़ों पे ले जाती है। जी आप
सदा, इस बात से मुझे याद आया, मेरी बहन की जो देवरानी है पाकिस्तान में, उसने आपको सलाम भी भेजा था, वो अपने अकीदे की बहुत पक्की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुन सुन के जो है वो माशाल्लाह वो हम जैसी ही है, और मेरी बहन से ज़्यादा अच्छा जो है ना वो दीन पे अमल कर रही है। और जब आप कराची में थी, वो आपके पास आई थी, और उसके अल्फाज थे कि उस्ताजा को देख के मैं हैरान रह गई, और कहती सबसे पहले आके मैंने अपनी क्लिनजिंग की, अपने आप को बेहतर किया
जी, इसलिए कि हमारे जहनों में दीन के साथ वो बस सरपुट सा ही एक तसव्वुर आता है। यकीन करें कभी दिल ना भी करे ना, तो ये सोच के करना पड़ता है कि लोगों को ये पता चल जाए कि ये जायज़ है, और दीन वाले भी कोई अच्छा ज़ौक रख सकते हैं और वो भी अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हाय दीन वाले, हाय वो मासी, वो सफ़ेद कपड़े, वो जाली का दुपट्टा और वो सफ़ेद चादर और वो क्रीम और ऑफ वाइट कलर के दो जोड़े। नहीं, ये लोगों को आपने पुट ऑफ किया दीन से। आप अल्लाह के लिए पहन के देखें, वल्ला ही आपको ये परवाह भी नहीं होगी कोई देखे ना देखे। बीसियों बार ऐसा क्या, बल्कि 90% ऐसा होगा कि कोई देखे भी ना, कोई देखे तो उलझन आती है, कोई कह दे बहुत अच्छा लगता है तो गुस्सा आता है, चिढ़ आएगी, क्योंकि मैंने तो अल्लाह के लिए पहना है, मैंने तो उनको दिखाना है जो डरते हैं इस काम से। हमने आज दीन को इतना मुर्दा और इतना गरीब दिखाया, नुकसान क्या हुआ कि वो जो जायज़ था वो भी छोड़ गए, तो वो जो बेचारे अभी इन चीज़ों के शहर से निकले नहीं, वो कहेंगे अभी 10 साल बाद सोचेंगे। तो हमेशा देखिए अपने लिए करें, अल्लाह के लिए करें, तहदीस नेमत के लिए करें। लोग शादियों में अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लोग महफिलों में पहनते हैं, आप देखिए लाखों के अब तो जोड़ों पे बात चली गई है। तो अगर लोगों को आप दीन के नाम पर जायज़ चीज़ों से भी दूर कर दें, ये भी हराम वैसे बेहतर है आप ना करें, हाँ ये भी मना है बेहतर है आप ना करें, नहीं तो बेहतर बेहतर करके आपने दीन को इतना सख्त कर दिया, अल्लाह ने तो ऐसा नहीं कहा था। तो बी नेचुरल, नेचुरल रहें, बेवकूफ़ भी ना लगे, पागल भी ना बने और आप बिल्कुल एक अजूबा भी ना बने। जब दिल करे कर ले, जब दिल करे ना करे, ना आप शोपीस बने, ना आप किसी के लिए करें और ना किसी के लिए रुके। हमेशा अपनी ज़िंदगी में कसूल बनाए, हलाल को हराम भी नहीं करना लोगों के डर से और हराम को हलाल भी नहीं करना। कई लोग सिर्फ लोगों के डर से नहीं, फिर लोग क्या कहेंगे, भाई लोग क्या कहेंगे, अल्लाह इजाज़त दे रहा है तो लोग आपको क्या कहेंगे। तो आपको देखकर एक डिसेंट और एक शुस्त इंसान का तसव्वुर आना चाहिए, बाल उड़े हुए, आंखों में गिद्धें पड़ी हुई और आप जाके बैठ गए और आप भी सो रहे, सब सो रहे, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। तो बहरहाल नीयत अपनी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए और दीन को खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका है। मुझे किसी एक बहुत बड़ी महफिल की कहानी याद आ जाती है, मेरे हाल में सिंगापुर में थी, किसी सफ़ीर मशीर के घर में किसी ने कोई दर्स रखा हुआ था, बात भी थोड़ी सी पुरानी हो गई। तो वहाँ जो दर्स करवाया था जिन सिस्टर के थ्रू, हम तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे, वो तो अल्लाह ने उनसे लिया। तो वहाँ जाने के बाद जो वहाँ की बेगमात और जो ज़ाहिर है कि जो जैसे होते हैं उनके पास आने वाले भी, तो उन लोगों ने तो वल्ला ही मेरे पास आकर हमें बताया था कि हम इतना डर रहे थे, खौफ ज़दा थे आपके आने से पहले कि पता नहीं होगा क्या, पर आप तो हमें अपने जैसी लगी हैं। तो मैंने कहा आपने मेरे बारे में क्या बुरा तसव्वुर सोचा हुआ था, नहीं आप हंस रही हैं, आप बोल रही हैं, आप बात भी अच्छी कर रही हैं, आपने कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं, और मैं हमेशा बाहर से आती हूँ पूरे निकाब में आती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है मैं कुर्सी तक बैठने तक निकाब में रहूँ, बट जहाँ मुझे ऐसी फीलिंग आए कि ऐसी खौफजदा ख़वातीन है, मैं जाती ही पहले कमरे में अबाया उतार के बिल्कुल नॉर्मल रूप में आती हूँ। क्योंकि बाज़ लोग देखिए अबाया पहनते, स्काफ पहनते, सारा दिन वही, घर में भी वही, बाहर भी वही, अंदर भी वही, घर में भी वही, क्यों भाई स्काफ पहना है तो आपने स्काफ ही शुरू कर दिया। कई लोग तो निकाब भी बस उलटना हो तब भूल ही जाते हैं, आधा वक्त निकाब में बैठे होते हैं। तो आप पुट ऑफ कर देंगे उन लोगों को, जब अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है तो आप क्यों नहीं करते। तो बहरहाल ये है कि इसके लिए हिकमत की ज़रूरत होती है, बस अल्लाह से हिकमत मांगने की ज़रूरत है।